राज्यसभा में जो कुछ हुआ था वह सब मुझे मालूम पड़ गया। मुझको वह अच्छा नहीं लगा। संपत्ति और सत्ता मनुष्य के मन को कभी कभी पशु से भी अधिक क्रूर बना देती है। राज्य में से अपना भाग मांगने वाले युधिष्ठिर के साथ अपनी मामा ने जो व्यवहार किया था वह किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता था। मुझको तो वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। परंतु अच्छी न लगने वाली सभी बातें व्यक्ति सदैव ही टाल सकता है, ऐसी बात नहीं। मुझको शकुनी मामा का अपना राज्य छोड़कर हस्तिनापुर में रहना भी अच्छा नहीं लगता था। सारी विपत्ति की जड़ वे ही थे। सभागृह में पांडवों की ओर से युवराज युधिष्ठिर ने हम महाराज पांडव के पुत्र हैं कहकर प्रार्थना की कि मेरे दिग्विजय पिता के जीते हुए राज्य का न्यायोचित भाग मुझको दिया जाए। राज्यसभा में सभी वृद्ध और अनुभवी कौरव योद्धा होते हुए भी शकुनी मामा के बीच में उठकर कपट भाव से कहा, पांडवों को राज्य का भाग ही यदि चाहिए तो कौरव उनको बड़े आनंद से खांडव वन का विशाल राज्य देने को तैयार है। पांडवों का जन्म शतशृंग पर्वत पर हुआ है, उनको पर्वत पर और अरण्य में रहने का ही अच्छा लगता है। मामा का ये वचन ज्वलंत अन्याय ढोंग और क्रूर असत्य से भरे हुए थे, लेकिन सभा के सभी योद्धाओं ने विवश स्तब्धता स्वीकार कर ली थी। अग्रात से वचन लेकर मैं आज बड़ी भूल कर बैठी थी। पांडवों पर अन्याय हो रहा था यह जानकर वे सभा में अत्यधिक बेचैन उठ रहे थे, लेकिन वचन के कारण वे कुछ कह नहीं सके थे। युधिष्ठिर ने खांडव वन स्वीकार कर लिया, सभा विसर्जित हो गई। सभा से आते यंगराज बोले, वृषाली पांडवों को घनघोर अरण्य देने में मामा की शायद यही इच्छा है कि वे जंगली पशुओं का भोजन बने। सभा में जो कुछ हुआ वह वीरों का अनुरूप नहीं था। ठीक आज ही मुझसे वचन लेने की तुम्हें कैसे सूझी? 12 दो दिन आचार्य विदुर की पर्णकुटि में रहकर पांडव खांडव वन की ओर जाने वाले थे। उनके दो दिन रुकने की अवधि में एक बार राजमाता का दर्शन करने की मेरी बड़ी उत्कट इच्छा थी। राजमाता कुंती देवी के प्रति मेरे मन में इतना आकर्षण क्यों था इसका उत्तर शायद मैं कभी न दे पाती, लेकिन आकर्षण था यह सत्य है। जीवन में अनेक व्यक्ति मिलते हैं, उन सबके प्रति भी मुझको हमेशा विशेष लगाव हो जाता हो ऐसी बात नहीं होती, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के प्रथम बार के दर्शन से ही एक विचित्र लगाव, एक विचित्र आकर्षण पैदा हो जाता है। राजमाता के संबंध में मेरे मन की भी यही स्थिति हो गई थी। बहुत दिनों के बाद मिलने पर अवसर आने के कारण उनसे बात करने की मेरी प्रबल इच्छा हो रही थी, और यह संयोग राजमाता कुंती देवी ने उपस्थित कर दिया। उन्होंने पर्णकुटि से एक सेवक या तो संदेश भेजकर मुझको बुलवाया। मैं यही चाहती थी, उनके मन में मेरे प्रति प्रेम था यह बात मैं बहुत पहले ही जान गई थी। उनका संदेश आते ही मैंने क्षण भर भी विलम्ब किए बिना सत्यसेन दादा को बुलवाया। उन्होंने रथ जोड़ा और आचार्य विदुर जी की पर्णकुटि के सामने खड़ा कर दिया। पर्णकुटि के द्वार पर ही राजमाता कुंती देवी और आचार्य दोनों खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। मुझको देखते ही राजमाता आगे बढ़ी। पांडव शायद नगर में गए हुए थे। रथ से नीचे उतरते ही उनके चरण स्पर्श कर मैंने आदरपूर्वक उनको वंदन किया। कंधे पकड़कर मुझको ऊपर उठाते हुए वे बोली, बहू तुम गर्भ से हो, इसका पता मुझे नहीं था, नहीं तो मैं ही आकर तुमसे मिल लेती। उनका प्रत्येक शब्द मुझको अपनी माता की तरह ममता से भरा हुआ लगा। इस सत्यशील राजमाता को दैव ने कितना क्रूर दंड दिया था, लेकिन फिर भी उस कुलवान शरीर में कितना विशाल मन था। एक महारानी मुझ जैसी सूत कन्या की सूतराज की पत्नी को प्रेम पूर्वक कुशल क्षेम पूछ रही थी। मन में एकदम विचार आया कि दैव हाथ में कटीला शस्त्र लेकर गुणवान व्यक्तियों का पीछा क्यों करता रहता है? संसार में सभी सज्जनों के हिस्से में से दुर्भाग्य क्यों आता है? कहीं यह बात तो नहीं कि दुर्भाग्य को स्वीकार करने योग्य विशाल हृदय सज्जनों के पास ही होता है, औरों के पास नहीं? राजमाता ने से मैंने निसंकोच बातें की। बीच बीच में बड़े ही प्रेम से मुझको बताती जाती थी कि गर्भावस्था में शरीर का ध्यान कैसे रखना चाहिए। जब मैं लौटने लगी तो वे बोली, तुमको जो पुत्र होगा वह विख्यात होगा, तुमने उसका नाम क्या रखने का निश्चय किया है? यदि उसको कवच और कुंडल हुए तो कवचधर या कुंडल सेन? मैं बोली। कुछ रुक कर वे बोली, नहीं बहू, न कवच उसके पास होगा और न कुंडल ही होंगे। हाँ, अपने पिता की तरह वह सुंदर अवश्य होगा, वह भी तुम्हारी तरह भाग्यशाली, इसीलिए तुम अपने नाम पर उसका नाम ऋषिसेन रखना। आपकी इच्छा है तो मैं उसका नाम ऋषिसेन ही रखूंगी। मैंने उनसे विदा ली और पर्णकुटी से बाहर निकल कर रख बैठी। उनकी सभी बातों में से न कवच उसके पास होगा और न कुंडल ही होंगे, इसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने यह बात क्यों कही थी, इसका कोई उत्तर मुझको नहीं मिला। 13 पांडव अपनी माता को साथ लेकर खांडव वन की ओर चले गए। वहां वे पर्णकुटी बनाकर रहने वाले थे। एक पराक्रमी राजा के 5 सुपुत्र एक घने अरण्य में रहने के लिए चल गए थे। यह बात मुझको खटक रही थी, लेकिन मैं एक स्त्री थी। जो कुछ हो रहा था उसको चुपचाप देखने का अतिरिक्त स्त्री कर भी क्या सकती है? अपने कुटुंब का भला करना है बस उसके वश में होता है। मैं अंगराज से स्वर्ण जी के विवाह की बात अनेक ढंग से कहा करती थी। एक बार पूर्णिमा के शुभ दिन में अपनी सेना लेकर स्वर्ण जी के साथ वजह ढूंढने के लिए कुल निर्देश चले ही गए, मेरा मन शांत हो गया। जिस दिशा में वे जाएंगे उस दिशा को निश्चय अपने अधीन कर लेंगे, इस पर मुझको विश्वास था। 1 महीने बाद वे लौट कर आए। उनके साथ कुलिंद राज की एक रूपवती तरुणी थी। राजप्रसाद में आते ही मैंने उसकी आरती उतारी। मेरी एकमात्र देवर की वह पत्नी होने वाली थी। उसकी देह कांति आकाश की विद्युत की तरह तेजस्वी थी। आंखें बड़ी बड़ी थी, नासिका एकदम सरल थी, मुखमुद्रा अंगराज की तरह ही गोलाकार थी। उसका नाम था मेघमाला। राजप्रसाद के सम्मुख भव्य मंडप बनाकर उसने मेघमाला और स्वर्ण जी का विवाह संपन्न किया गया। उनके विवाह में मुझे बड़ा आनंद मिला क्योंकि मैं एक उत्तरदायित्व से मुक्त हो गई थी। विवाह के उपरांत वंदन करने के लिए अब स्वर्ण जी वधु के साथ आए, तब मैं बोली, देवर, यह मेघों की माला तुम्हारे कंठ में डाल दी है, उसको संभालना, तुम्हारे संसार में इंद्रधनुषी रंग पुष्पित होंगे। वे परिचित सहजता से हंसते हुए बोले, जैसे भैया ने दो विवाह किए हैं वैसे ही मैं ही करूँगा, क्या यह समझ रही हैं आप भाभी जी? लेकिन भैया में और मुझ में बहुत अंतर है। 14. मैं सुप्रिया और मेघमाला हम तीनों की अपनी सास और ससुर की सेवा कर रही थी। हमारे देख देख में सदैव सुख की भावना से रहते थे। बेटियों, अब तो भगवान हमें अपने पास बुला ले, यही इच्छा होती है। सुख के शिखर से स्वर्ण को लग जाने वाला मार्ग यदि समीप होता तो कितना अच्छा होता। कर्ण अंगराज हो गया, उसके विवाह हो गए, स्वर्ण भी चतुर्भुज हो गया, हम जैसे सारथी इससे अधिक सुख की और क्या कल्पना कर सकते हैं। मुझको चिकोटी काटती हुई सुप्रिया उनसे कहती, लेकिन पिताजी, हमने सुना है कि नाती का मुख देखे बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलता। हाँ सुप्रिय, वह एक इच्छा शेष है। विशाली जल्दी हमारी इच्छा पूरी करेगी। क्यों विशाली? वह मुझसे पूछते। मेरा मुख लज्जा से लाल हो जाता। मैं सुप्रिया की ओर बनावटी क्रोध से देखती। वह मुंह मोड़कर खिलखिलाकर हंसती रहती। सुदामन के बाद कई वर्षों से हमारे महल में बाल बोल नहीं गूंजे थे। 15. दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। मुझे उठने बैठने परेशानी होने लगी। तल्प पर लेटने पर मेरा संपूर्ण जीवन मेरी आंखों के आगे आकर खड़ा हो जाता। बचपन से ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण माता और सत्यसेन भैया ने बड़ा प्यार से मुझे पाला था। जिस दिन हम हस्तिनापुर में आए थे उसी दिन माता भी सदैव के लिए चली गई थी। प्रयाग में और मैं अंगराज पहली बार मिले थे। उनका कारण बना था एक घोड़ा और एक घड़ा। मैं सदैव उस घोड़े को मन मन धन्यवाद दिया करती थी। उसने मुझको जन्म जन्म का साथी दिया था। पराक्रमी, रूपमान, गर्वहीन और स्नेहशील, उनके साथ रहने में मेरे जीवन में बसंत आ गया था। मातृत्व स्त्री के जीवन यज्ञ की पवित्र संपूर्ति है। मातृत्व प्रकृति द्वारा स्त्री को मिला हुआ श्रेष्ठतम वरदान है। पराक्रम का मातृत्व पुरुष के हाथ में होता है, परंतु मातृत्व का पराक्रम करना केवल स्त्री ही जानती है। मातृत्व स्त्री की श्रेष्ठतम और सहज सुंदर साधना है। अन्य सब आनंद सापेक्ष होते हैं, परंतु मातृत्व का आनंद ब्रह्मानंद होता है क्योंकि वह सृष्टि का अतुल आनंद होता है। लेकिन वह आनंद सहज साध्य नहीं होता। उसके लिए स्त्री को मरण प्राय प्रसव वेदना सहन करनी पड़ती है। प्रसव वेदना की मुट्ठी में तप कर निखरता है मातृत्व का सुवर्ण, तभी तो स्त्री को उस पर अभिमान होता है। और एक दिन मैं प्रसव वेदना से तड़पने लगी। जैसे कोई हजारों बाणों की नोक मेरे पूरे शरीर में निर्दय होकर चुभ रहा था, मैं उन सब यात्राओं को धैर्यपूर्वक सहन कर रही थी। अपने पुत्र के जीवन के लिए मुझको सहन करनी ही थी। जीवन सभी को मधुर और स्मरणीय लगने वाला जीवन कितने कष्टों में मार्गों से साकार हुआ करता है। माता के प्रसव वेदना के निश्वास से ही जन्म ग्रहण करने वाला शिशु जीवन का हुंकार लिया करता है। मातृत्व सबसे अद्भुत चमत्कार वेदनामय, परंतु उतना ही आनंददायक, भीतिदायक लेकिन आशाप्रद। मैं प्रसूता हुई और दुम्बर के पके फल जैसे अंजीर रंग के एक बालक ने जन्म लिया। मेरा शरीर रिक्त हो गया और मन वात्सल्य से भर गया। मैं माता बन गई। सारे अंग की शक्ति निकल जाने शरीर शांत हो गया था, फिर भी बड़ी उत्सुकता से जैसे तैसे अपने को संभालती हुई मैं उठी। दाई के हाथ से उस शिशु को लेकर मैंने छाती से लगा लिया। वह पुत्र था, ठीक महाराज जैसा दिखने वाला, परंतु उसके कान में महाराज जैसे कुंडल नहीं थे। उसके देह का चर्म अभेद्य था या नहीं यह भी पता नहीं चलता था। मुझको आश्चर्य का आघात लगा। राजमाता कुंती देवी का अनुमान बिल्कुल ठीक ही निकला था। उस शिशु की रोने की आवाज़ सुनकर महल के बाहर खड़े हुए महाराज, देवर, स्वर्ण जी, सुप्रिया, मेघमाला, सत्यसेन दादा सभी भीतर आए। भीतर आते ही महाराज ने तत्परता से मेरे हाथों से बालक को अचानक ही अपने हाथों में ले लिया। अत्यंत अधीर दृष्टि से उन्होंने उसके कानों की ओर देखा। उसके कुंडल नहीं है, वह बार बार टटोल कर देखा। उसके सुकुमार सुकुमार कनिष्ठिका पर उन्होंने धीरे से सुई छेदी। कनिष्ठिका पर क्षण भर में रक्त की मूल दृष्टि गोचर होने लगे। यह देखते ही वे एकदम गंभीर हो गए। उनकी लंबी देह अष्टि थरथराने लगी। शिशु को अपने हाथों से पुनः दाई के हाथों में देकर वे देवर स्वर्ण जी के पास आए और उनके कंधे पकड़कर उनको जोर से हिलाते हुए बोले, स्वर्ण, तुम मेरे सगे भाई हो, लेकिन तुमको कवच कुंडल नहीं है। यह मेरा पुत्र है, फिर भी इसको कवच कुंडल नहीं, क्यों नहीं है? मैं कौन हूँ? अरे तुम सब मुझको बताते क्यों नहीं कि मैं कौन हूँ? वे आगे बोले, सुदामन के समय भी मुझको बुरा लगा था, परंतु अगले पुत्र को कवच कुंडल हो गई इस आशा से मैंने अपने मन को समझा लिया था। आज इस संबंध में मैं पूर्ण रूप से निराश हो गया हूँ। मेरे किसी भी पुत्र को कवच कुंडल नहीं होंगे। स्वर्ण जी चुप थे, स्तब्ध थे। अपने पास खड़ी अपनी माता से व्याकुल होकर अंगराज ने पूछा, माता, तुम्हारे इस पौत्र को भी कवच कुंडल क्यों नहीं? उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया। अंत में वे उसी आवेश में मेरे पास आए और मैं शांत हूँ यह भूलकर मेरे हाथों को जोर से हिलाते हुए बोले, वैशाली कम से कम तुम ही बताओ कि मैं कौन हूँ। कोई तो मुझे बताया मैं कौन हूँ, इतने क्यों उद्विग्न होते हैं? आप राधा माता के पुत्र हैं, शोर जी के अग्रज हैं, आप इस बालक के पिता हैं, आप अंगराज हैं। मैंने धीरे से उत्तर दिया, नहीं वैशाली यह बात नहीं है, मैं कौन हूँ यह बात स्वयं मैं नहीं जानता और कभी कोई मुझको यह बताता भी नहीं। यह कहकर वे वहाँ से द्रुत गति से चले गए।